उन लोगों की, अब दो तरह के लोगों की बात आ रही है। ये एक तो वो लोग थे जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने अल्लाह ताला को नहीं पहचाना, कायनात की निशानियों को, खुली निशानियों को देख के भी इंसान दो तरह के हो जाते हैं। एक वो जिन्होंने आयात को देखा, ध्यान नहीं दिया, ना अपने पैदा करने वाले को पहचाना, ना इस पे गौर किया कि ये जो जानवर हैं, ये देखो एक जानवर दूसरे जैसा नहीं, देखो ये सितारे हैं इतने आसमान पे, खरबों खरबों सितारे हैं, हमारी एक गैलेक्सी में ही पता नहीं कितने अरब सितारे हैं, और इतनी गैलेक्सी डिस्कवर हो चुकी हैं, तो ये क्या है सारा कुछ, ये इसके बनाने वाला चलाने वाला कौन है, कुछ नहीं पता। उन्होंने इन चीजों से भी अल्लाह को नहीं पहचाना, उनकी बात की जा रही है। और दूसरी तरफ वो जिन्होंने इन्हीं निशानियों से अपने रब को पहचान लिया, तो पहली दो आयतों में उन लोगों की खास निशानियां बताई जा रही हैं जो अल्लाह को नहीं पहचानते। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना, बेशक वो लोग जो उम्मीद नहीं रखते हमारी मुलाकात की, जिनको हमारे पास आने का खटका ही नहीं है, उनकी हालत ये है के वो रदू बिल हयात दुनिया, वो दुनिया की जिंदगी पे ही राजी हो गए। जाहिर है आखिरत का जब कोई कटका ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, तो यहीं पे राजी हो जाना है ना, इंसान की कैफियत की तरफ इशारा है। फिर उसके लिए क्या है, आइडियल जिंदगी यही है, और इसी को आइडियल से आइडियल बनाना, इसी को जन्नत बनाना, यही उसका एम बन जाता है। वो फिर क्या, रदू बिल हयात दुनिया, राजी है, इसी में खुश है, इसी के अंदर वो दुनिया ही को सब कुछ समझ रहा है। वतमअन्नु बिहा, और मुतमईन हो गए इसके, इतनी हैप्पी है इसमें, इतने महव है, इसी में गुम हो गए। बहुत सारी लोग आप ऐसे देखेंगे, ये आयत जो है ना, वैसे तो उन लोगों के लिए है जो कि आखिरत पर ईमान ही नहीं रखते, ला यरजूना लिक़ाना, वो हमारी मुलाकात को भूले हुए हैं, उम्मीद ही नहीं रखते कि कभी अल्लाह की तरफ जाना है, इसीलिए वो देखें दुनिया में हर यानी अल्लाह ताला के हुक्म को भुला के सिर्फ इसी दुनिया पे राजी हो गए। दुनिया में इतने मुतमईन बैठे हैं जैसे कहीं जाना ही नहीं, हमेशा यही रहना, उनको कभी ध्यान ही नहीं आता कि देखो हर एक इंसान यहाँ से जा रहा है, कोई जल्दी जा रहा है, कोई देर से जा रहा है, हमें भी जाना होगा, तो वहाँ के लिए हमने क्या तैयारी की है, नहीं, कोई उनको इस चीज का एहसास नहीं। तो वैसे तो उनके लिए जो आखरत के मुनकर है, लेकिन आज अफसोस है कि हमारे मुसलमानों का भी यही हाल, हमारी जिंदगी के जो दिन और रात गुजर रहे हैं, और जो हमारे मशगले हैं, और जो हमारी फिक्रे हैं, अगर देख ली जाए ना, अल्लाह अकबर, तो ये पता चलता है कि हमें इस दुनिया के सिवा और कोई फिक्र है ही नहीं, इसके बावजूद हम अपने आप को पक्का और सच्चा मुसलमान कहते हैं। हमारे तो असलाफ ऐसे थे कि उनको उनके चेहरे देख के अल्लाह याद आ जाता था, और वो इतना डरते थे कि हजरत उमर के तो चेहरे के ऊपर जैसे दो लकीरें पड़ गई थी रो रो के आखिरत के खौफ से। लेकिन हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें किसी हस्ती का खौफ नहीं, किसी हिसाब की फिक्र नहीं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, जो गुनाहों से मासूम थे, उनका हाल ये था कि अक्सर औकात, तिर्मिजी में आता है कि अक्सर औकात गमगीन रहते थे, मुतफक्किर नजर आते थे, कि फिक्र में रहते थे। क्या हमारी फिक्रें ऐसी हैं? हमारी फिक्रें आखिरत कितनी और फिक्रें दुनिया कितनी, कहीं हम राजी तो नहीं हो गए इसी दुनिया पे? आज कितने ही मुसलमान घराने हैं जो गाफिल हैं, सोए हुए हैं, नहीं जागते, और अगर उनको बताया जाए तो फिर वो बहुत माइंड करते हैं कि हमारी दुनिया के हंगामों में हमारा मजा इन्होंने किरकिरा कर दिया, मजा खराब कर दिया, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, खा रहे हैं, जॉब है, करियर है, गाड़ियां हैं, जेवर हैं, शॉपिंग है, और वेकेशन है, और इसका कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं। और वर्तमान अन्नु बिहा, देखते हैं कितने मुतमईन हैं। और पूछे कि क्या जिंदगी बस यही जिंदगी है? देखिए एक जिंदगी को अगर देखे ना, बचपन है, अभी बचपन खेल कूद के अंदर गुजर जाता है, इंसान को पता भी नहीं चलता, तो उसका बिल्कुल ही एहसास भी नहीं होता कहाँ गया कब चला गया। इंसान जवान होता है तो थोड़ी समझ आती है, इतनी जिम्मेदारियां, पहले तालीम की, फिर उसके बाद अच्छी जॉब की, उसके बाद शादी की, उसके बाद बच्चों की, फिर उनकी तालीम की, फिर उनकी शादियों की, इतनी जिम्मेदारियां सर पे पड़ जाती हैं कि इंसान को पूरा करते 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 जब फारिग होता है ना, जब फारिग होता है, जब जिंदगी में जरा ठहराव आता है, तो पता चलता है कि हाय जिंदगी तो गुजर भी गई। शीशे में देखता तो बाल सफेद होने लगे, कमर अब झुकने लगी है, आंखें अब सही देख नहीं रही। तब इंसान कहता है इसके लिए मैं इस दुनिया में आया था, क्या यही जिंदगी है? तो पलक झपकने में गुजर गई, पता भी नहीं चला। तभी फिर लोगों को डिप्रेशन होने लगता है, क्या ये क्या हो गया? जैसे रेत मुट्ठी में लिए और कैसे निकल जाती है हाथों, इस तरह जिंदगी चली जाती है। वो इंसान एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि ये क्या हो गया मेरे साथ। हमारा दीन कहता है ये जिंदगी सिर्फ नहीं है, ये तो बहुत लंबी है, ये यहाँ खत्म नहीं हो जानी, ये तो इससे आगे बहुत कुछ है। लेकिन जब इंसान सिर्फ इतना सिर्फ इसको जिंदगी समझता है और इसको इसके ऊपर मुतमईन होता है ना, उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में, पता ही नहीं चलता कब गुजर भी गई। आज तो बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और गफलत में पड़े हुए और भाग दौड़ी हैं और ये, लेकिन एक दिन जब भाग दौड़ खत्म होती है, हाथ पैर जवाब देने लगते हैं, तब एहसास होता है कि हमने क्या गंवा दिया, कितना वक्त हाथ से चला गया। وَالَّذِينَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, और वो हमारी आयात से गाफिल है। क्यों गाफिल है? क्यों है गाफिल? इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है? رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَلَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है कि वो हमारी आयात से गाफिल? गफलत का बात ही है। देखिये जिस इंसान को आखरत की मुलाकात का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मैंने वापस जाना है, जो इस दुनिया पे ही राजी हुआ हुआ है ना, तो फिर उसको आयतों की क्या जरूरत है अल्लाह की? उसके लिए तो एक फालतू चीज है। वो कहता फिर क्या ये फर्ज है? क्या ये इसको पढ़ना फर्ज है? क्या इसको समझना फर्ज है? क्या जरूरी है? और नहीं हमारे पास कोई काम, उसको जरूरत ही क्या है? वो जरूरत महसूस ही नहीं करता, वो मुतमईन है, जिंदगी अच्छी भली कट रही है, ये हमारे पास ये नेमते हैं, ये नेमते हैं, हमें क्या जरूरत है कुरान की? हमें क्या जरूरत है ना आयात की, ना उसको दुनिया की। ये आयात जो देखिए, आयात दो तरह की है ना, एक तो ये कायनात में फैली है जैसे मा खलकल्लाहु फिस्समावाति वल अर्ध, फिर इख्तिलाफिल लैली वन नहार, ये सब आयतें हैं, ये निशानियां अल्लाह की साइंस है। और एक ये आयतें हैं कुरान की, और हर आयत से गाफिल रहता है क्योंकि वो दुनिया में सेटिस्फाइड है, इसने दिल यहाँ लगाया हुआ है, तो किसके पास फिर टाइम है कि अब मैं कायनात की निशानियों पर गौर करती रहूं? देख रहे हैं बाहर, देखते हैं आसमान को जमीन को, कुरान पढ़े में घर में, लेकिन अपने धंधों में इतने मसरूफ है, इतनी दुनिया में गुम है कि उनको वक्त ही नहीं है कि वो कभी इन आयात पे गौर कर लें। इसीलिए आप देखते हैं ना क्या होता है कि एक जॉब है, अब वो एक जॉब उससे थोड़ा सा टाइम मिला, अब क्योंकि दुनिया के अंदर ही मस्त है और इसी को बस जन्नत बनाना है, अब क्या है थोड़ा सा टाइम मिला तो कहते हैं अब थोड़ा टाइम और मिल गया ना, अब एक और जॉब कर लेती, सेकंड जॉब कर लेती, कोई पार्ट टाइम और जॉब ढूंढ लेती। इसलिए कि सारा कुछ इसी को समझ लिया है ना, किसी को इसी तरह कोई और चीजों का शौक है, कपड़ों का शौक है, तो सारी अपनी जो अपना वक्त, अपनी एफर्ट, अपनी एनर्जी सब उसी में लगा रहे, किसी को इकतदार का स्टेटस का शौक है वो उसके पीछे अपना तन मन धन लगाए ने, फिर बताएं वो कहां से वक्त आएगा इन आयात के ऊपर गौर करने का, फिर तो गाफिल ही रहेंगे ना। एक जो आखरत को सामने रख के चलता है और जो उसको भूल के चलता है ना, दोनों के अमल में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। और दुनिया में अक्सरियत लोगों की आखरत को भूल के चल रही है, आखरत को भूल के चल रही है, दुनिया की दौड़ में लगी हुई है, उसी पे मुतमईन होने वाले हैं, बस ये मिल गए यही बस, उस पे इतने सेटिस्फाइड है ना कि जैसे हमें सब कुछ मिल गया, अब कुछ और क्या चाहिए। किन चीजों में इंसान उलझा है, इसके बिल्कुल उलट उन लोगों का काम होता है जो आखरत को सामने रख के चलते हैं। वो कैसे गाफिल हो सकता है जिसकी सोचों में वो दिन हो जो इतना खौफनाक है कि जिस दिन पैगंबरों के बराबर भी कोई अमल ले आया तो वो कहेगा मेरा अमल कम है, जिसकी नजरों के सामने वो दिन रहता, वो कैसे गाफिल हो सकता है, वो कैसे मुतमईन हो सकता है कि बस ये मिल गया तो बस ठीक है, वो कैसे राजी हो सकता है दुनिया की जिंदगी पे। तो जिसको आखरत में खड़े होने का यकीन होता है उसका तो जी दुनिया से उठने लगता है, वो यहाँ ऐसे मुतमईन बैठा नहीं रहता, फिर वो यहाँ दिल लगा के नहीं बैठता, फिर वो इसमें खो नहीं जाता, उसकी नजर ही चेंज हो जाती है। वो कहता है किसके पास टाइम है इन चीजों के लिए, मुझे तो बड़े मकसद को अचीव करना है, मुझे तो बड़े दिन का खौफ है। हम देखेंगे हमारी जिंदगी किससे सिमिलर है, किसके जैसी है, क्या हमारी जिंदगी वो नजर आती है कि जिसकी नजरों के सामने आखरत रहती है और उसको फिक्र रहती है, उसकी एक्टिविटीज उसका दिन और रात डिफरेंट होंगे उसकी एक्टिविटीज से जिसके सामने हर वक्त दुनिया रहे और वो इसी पे राजी है। दोनों में फर्क होगा और हमने देखना है कि हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही, हमारे दिन और रात कैसे गुजर रहे। जिंदगी को तो छोड़े पूरी जिंदगी का क्या हाथ करना, आप सिर्फ अपने दिन और रात की एक्टिविटीज से देख लें। और जिसने दुनिया कमाई उसको दुनिया ही मिल जाएगी, और जो आखरत के कमाने वाला है वो उसी को आखरत मिल सकती है, दुनिया कमाने से आखरत नहीं मिल जाएगी। उलाइका मावाहुम नार बिमा कानू यक्सिबून, यही लोग हैं इनका ठिकाना आग है इस वजह से कि जो वो कमाई करते थे, उन्होंने कमाई किसके लिए की, जिसके लिए भी कमाई करोगे वो ही मिलेगी ना, उन्होंने कमाई जन्नत के लिए की ही नहीं तो फिर कैसे जन्नत मिलेगी। तो देखिए मेरी कमाइयां क्या हैं, मैं कितना कमा रही हूँ। एक तो आप दुनिया का पूछते ना लोगों से, आपकी कितनी तनख्वाह है, आपकी क्या पे है, आपकी क्या सैलरी है, ये दुनिया की कमाइयां, एक आखिरत की भी कमाई होती है, उसमें मेरी सैलरी कितनी है, बहुत कर रही हूँ, मिडिल में हूँ या पुअर है। जैसे दुनिया में एक मजदूर की सैलरी कम होगी, एक प्रोफेशनल की वो उससे ज्यादा होगी, एक उससे बड़ी होगी किसी और बड़े और किसी बड़े ओहदे वाले की उससे बड़ी होगी, इसी तरह आखिरत के लिए भी कमाई है। लोग जैसे यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं दुनिया के लिए, इसी तरह आखिरत के लिए भी मेहनत करने वाले हैं। मेरी मेहनत किस दर्जे की, अपना हिसाब हम खुद करें इससे पहले कि हमारा हिसाब किया जाए। इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, जो भी लोग हैं जो ईमान लाए और उन्होंने साले अमल किए। पहले कौन से लोग थे जो इनको कोई नहीं फिक्र कि हमारी मुलाकात अल्लाह से होनी, एक वो लोग हैं जो फिक्र में रहते हैं, जो ईमान ला के नेकियां करते रहे। यहदीहिम रब्बुहुम बी ईमानिहिम, उनका रब उनकी रहनुमाई करेगा उनके ईमान की वजह, उनका रब उनको रास्ता दिखाएगा उनके ईमान की वजह से। यानी ईमान था उनके अंदर, जिस ईमान की वजह से अल्लाह ने उनको हिदायत दी, अल्लाह उनको हिदायत देगा। कहाँ पे हिदायत, दुनिया में भी हिदायत, दुनिया से भी ताल्लुक है, क्योंकि हिदायत क्या है, हिदायत का मतलब क्या है, रास्ता बताना रास्ता दिखाना और मंजिल तक पहुंचाना। तो अल्लाह ताला उनको राह भी दिखाएगा क्योंकि उनमें ईमान है। सुभान अल्लाह, अल्लाह उनको उस रास्ते पे उस रास्ता बता भी देगा, दिखा भी देगा। और सबसे मुश्किल काम क्या होता है, हम कहते ना अमल बड़ा मुश्किल है, अल्लाह उनके रास्ते पे चला भी देगा। ये है हिदायत जो हम मांगते ना, ए हदीना सिरात अल मुस्तकीम, अल्लाह रास्ता बता भी देना, दिखा भी देना। अभी जैसे हम रास्ता देख रहे हैं ना, इस कुरान को पढ़ के हमें रास्ता नजर आने लगा, अच्छा ये रास्ता है जो जन्नत तक जाता है, अब इस पे चलना तो बड़ा मुश्किल है या अल्लाह, अब क्या करें। जब हम मांगते हैं दिन सिरात अल मुस्तकीम, तो हम ये भी मांग रहे हैं कि अल्लाह इस पे चला भी देना मुझे, कि मैं मंजिल तक पहुंच जाऊं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो ईमान ला के साले अमल करते हैं ना, हम उनको रास्ता दिखाते भी हैं, उस पे चलाते भी हैं और मंजिल तक भी पहुंचा देते हैं। इसी तरह आखिरत में भी अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई कर देगा उनके ईमान की वजह से। कैसे? कि उनको जन्नत तक पहुंचा देगा। आपको पता है ना कि पुल सिरात से पहले नूर तकसीम होगा, हर एक ईमान के मुताबिक उसका नूर होगा, किसी का नूर कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। तो अल्लाह ताला वहां भी उनकी रहनुमाई करेगा और उनको पुल सिरात से गुजार के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये भी है हिदायत, यानी दुनिया में भी हिदायत करके उनको, दुनिया में भी उनसे ऐसे काम करा लेगा, दुनिया में भी उनको अमल की तौफीक दे देगा, दुनिया में भी उनके लिए आसानियां कर देगा और आखरत में भी उनके लिए इतनी आसानी करेगा कि वहां पे वो जन्नतों तक पहुंच जाए। और इसके बारे में ये भी आता है कि इनके आमाल वहां पे अच्छी सूरत में और इतर और खुशबू बन के कब्र में भी आएंगे उनके पास और उनको खुशखबरी देंगे और पूछेंगे, ये पूछेंगे उनसे कि तुम कौन हो, वो जवाब देंगे तुम्हारे नेक आमाल है हम। ये अपने इन नूरानी अमल की रोशनी में जन्नत में पहुंच जाएंगे, यानी कब्र में ही आ जाएंगे ये नेक आमाल। नेकियां कितनी जरूरी है, साले अमल कितना जरूरी है, जिसको आज हम कितने सारी नेकियों को ऐसे छोड़ देते हैं कि मैं थक गई हूँ और मैं नहीं कर सकती, या मेरे पास कहाँ टाइम, या मैं क्यों करूँ, फलां कर लेना, कितने कितना ही सारे नेकी के मौके हमारे हाथ से चले जाते हैं, हम एफर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन देखो यही नेकियां कब्र में कैसी सूरत में आएंगी और जन्नत तक पहुंचा देंगी। और काफिर का अमल जो है वो बदसूरत बदबूदार होके इसमें चिपट जाएगा, उसको धक्के दे दे के जहन्नुम में ले जाएगा। अल्लाहु अकबर। तजरी मिन तहतिहिम अल-अनहार फी जन्नातिन नईम, ऐसी जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, ऐसी नेमतों भरी जन्नत में अल्लाह ताला इनको रहनुमाई कर देगा, इनको गाइड कर देगा, इनको पहुंचा देगा, इनको ले जाएगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, नाम इनमें शामिल फरमा देना। दावाहुम फीहा सुभानकल्लाहुम्मा, वो ऐसी जन्नत होगी जिनमें इनकी पुकार क्या होगी, सुभानकल्लाहुम्मा, सुभानका, पाक है तू, यानी अल्लाह तू हर ऐब से, हर कमजोरी से, हर ज़ोब से, हर ऐसी चीज जो तेरे शायाने शान नहीं है उससे तू पाक है। और ये क्या होगा, दावा, उनकी दुआ होगी। लेकिन दुआ तो कोई चीज के लिए मांगी जाती है, दुआ तो कोई सवाल होता है, इसमें तो कोई सवाल नहीं है, है ना। यहाँ पे तो कहा है सुभानकल्लाहुम्मा, ये उनकी दुआ होगी, इसमें तो कुछ मांगा ही नहीं है। असल में जन्नत में जन्नत वाले उनको हर चीज जैसे वो चाहेंगे खुद ब खुद मिल जाएगी, किसी चीज को मांगने की या दरख्वास्त करने की या तलब करने की या दुआएं करने की जरूरत नहीं होगी, बस ये सिर्फ एक तस्बीह होगी, ये तस्बीह करेंगे और वो चीज हाजिर हो जाएगी, अपनी खुशी से करेंगे। सुभानकल्लाहुम्मा, दुनिया में भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना हदीस कुदसी है कि जो बंदा मेरी हमदो सना में हर वक्त लगा रहता है, यहाँ तक कि उसको अपने मतलब की दुआ मांगने का भी वक्त नहीं मिलता, तो मैं उसको तमाम मांगने वालों से बेहतर चीज दूंगा, यानी बिन मांगे उसके सारे काम कर दूंगा, क्योंकि वो हर वक्त मेरी तस्वीर में लगा हुआ है, उसको बेचारे को इतना वक्त ही नहीं मिलता कि वो कुछ मांगे, दुआ करे, तो सुभानक अल्लाह को दुआ भी कह सकती है। तो वहां पे उनकी पुकार क्या होगी, उनकी यानी एक तस्बीह क्या होगी, सुभानक अल्लाह, और इसकी सदा होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत वाले इस तस्बीह को और हम्द को इस तरह अदा करेंगे जैसे सांस चल रही है, यानी बिल्कुल उनको कोई मुश्किल ही नहीं होगी, ऐसे जैसे सांस आपकी चलती है ना। हमने अभी तक कितने सांस ले लिए, हमें पता भी नहीं चला ना, जब से क्लास शुरू हुई है हम सांस मुसलसल ले रहे हैं। तो इस तरह सुभानक अल्लाहुम्मा, ये इस तरह तस्बीह होगी उनकी सांस की तरह। फिर ये भी कहा गया कि जो चीज खाना चाहेंगे उसी वक्त फरिश्ते लेकर हाजिर हो जाएंगे, ये उसको खाएंगे, खा के अपने रब की हम्द बयान करें, और ये और सिर्फ सुभानक अल्लाहुम्मा कहते ही 10,000 खादिम अपने हाथों में सोने के कटोरों में खाना लेके हाजिर हो जाएंगे, और ये सब में से खाएंगे। और व तहियतुहुम फीहा सलाम, और इनकी दुआए खैर एक दूसरे को हेलो हाय नहीं होगी, जिसको हम आज बहुत समझते हैं कि ये ज्यादा मॉडर्न चीज है और ये ज्यादा अप टू डेट होना है, सलाम वलाम कौन करे। तो सलाम इनकी दुआए खैर होगी, ग्रीटिंग होगी। जन्नतियों की पहचान ही है कि हर तरफ सलाम सलाम सलामती की दुआएं होंगी, ये यानी तुम सलामत रहो। असल देखिए जिंदगी का मजा ही तब है जब सलामती हो। अगर जिंदगी के अंदर परेशानियां हो या किसी किस्म की भी बीमारी है या गुर्बत है या कुछ ऐसी चीज है फकर फाका, तो इंसान की जिंदगी इंजॉय नहीं हो सकती। सलामती इन सब चीजों से, जो भी बुराइयां हैं जो भी शर है उससे जब आपको सलामती मिल जाती है ना, तभी आप जिंदगी को इंजॉय कर सकते हैं। तो वहां पे हर तरफ से सलामती सलामती की बात आ रही होगी। सिर्फ एक दूसरे को जब मिलेंगे तब तो करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना नहीं बल्कि ये सलाम अल्लाह ताला की तरफ से भी होगा, जैसे सूरह यासीन में सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, और फरिश्तों की तरफ से भी होगा, हर तरफ से फरिश्ते आएंगे। वल मलाइका तो यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब, हर दरवाजे से आएंगे, कहेंगे सलामुन अलैकुम, कहेंगे सलामती हो तुम पे। तो कभी अल्लाह की तरफ से सलाम आ रहा है, कभी फरिश्तों की तरफ से सलाम आ रहा है। दुनिया में तो ये एक दुआ है ना जो आप दूसरे को देते हैं, वहां पे ये खुशखबरी का कलमा होगा। दुनिया में तो आप कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, कि आपके ऊपर सलामती हो, लेकिन ये एक दुआ है, लेकिन वहां पे ये खुशखबरी है, खुशखबरी है कि अब तुम्हारे लिए सलामती है सलामती है, कोई डरने की बात ही नहीं, किसी चीज से भी नहीं खौफ तुम्हें भाई, ना कोई यहाँ पे बुढ़ापा है, ना कोई बीमारी है, ना कोई मौत है, ना कोई भी चीज नहीं है, ना कोई फकर फाका है, ना कोई परेशानी है, ना कोई गम है, ना औलाद का, ना अपना, ना किसी हालात का, ना कोई चीज का गम है ही नहीं, सलामती सलामती। अल्लाहु अकबर, कितनी पीसफुल जगह है जन्नत, वाकई सलामती की जगह, पीस की जगह है, सलामती है ना इसके अंदर, और हर चीज में सलामती, नेमतों की भी सलामती है कि वो भी नहीं कभी कहीं आपसे दूर होगी। अच्छा एक बात मैं और कहना चाह रही थी जो पीछे की रह गई, कि सुभानक अल्लाहुम्मा, जब दुनिया में हम बोलते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कोई कहा गया ना यहाँ पे, सुभानक अल्लाहुम्मा किस वक्त बोलते हैं, कब बोलते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जब हम किसी चीज से ना बहुत ही फैसिनेट हो जाते हैं, कोई ऐसी चीज देखते हैं कहते हैं हाय सुभान अल्लाह, ये कैसी चीज है, ऐसे होते हैं अमेज्ड हो जाते हैं जब किसी चीज से। तो वहां पे जो बार बार हम बोल रहे होंगे, तो क्यों बोल रहे होंगे जन्नती, जब ये बोलेंगे क्यों बोलेंगे बार बार, इसलिए कि ऑल द टाइम कोई ना कोई मंजर, कोई चीज, कोई नेमत उनको फैसिनेट कर रही होगी। ऐसे नहीं है कि जैसे बाद लोग पूछते हैं, सवाल भी मेरे से करते हैं कि देखिए हम जी वहां पे रह जाएंगे, रहते रहेंगे तो फिर हम बोर नहीं हो जाएंगे क्या, जन्नत में एवरीथिंग इज परफेक्ट, ना कोई कुछ है, तो हम बोरियत नहीं हो जाएगी, और जो चीजें मांग ली तो वो भी पहन, कपड़े वो पहन लिए, जो चीज चाहिए वो खा ली, जहाँ चाहा वहाँ पहुंचे, तो ये तो बड़ी बोरियत की बात है। मुझे वैसे हैरत भी होती है ऐसे लोगों पे। तो क्या बात है कि यानी दुनिया में हम इस तरह से जब कहते हैं कोई चीज से फैसिनेट हो गया, तो सुभान अल्लाह वहाँ पे अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी नियमते रखी हुई है, ऐसे ऐसे मंजर है, ऐसी ऐसी चीज है, कि इंसान सुभान अल्लाह कहता बंद ही नहीं करेगा, क्योंकि वो हर वक्त ही किसी न किसी चीज से ऐसे फैसिनेट हो रहा होगा, ऐसी ऐसी चीजें उसके लिए आ रही होंगी अल्लाह ताला की ऐसी ऐसी नेमते कि कोई वक्त तो होगा ही नहीं कि जब वो बोर हो, जब वो कहे गई अब तो बोरियत हो रही है, बोरियत होगी नहीं, क्योंकि नहीं से नहीं, नहीं से नहीं उसके सामने ऐसे ऐसे कुछ खुलता जाएगा, ऐसा कुछ आता जाएगा कि वो कहीं बोरियत की तो नाम की चीज ही नहीं होगी। तो इसलिए ये मांगा करें कि अल्लाह जन्नत दे दे, ये ना फिक्र किया करें कि वहां पे बोरियत होगी, अल्लाह हमें वहां तक पहुंचा दे। तो अब दूसरी ये बात देखिए, सलाम जिसको हम दुनिया में रिवाज नहीं देते, सलाम हम इसको अफशल सलाम बैनकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम को फैलाओ अपने दरमियान, इसको रिवाज जो क़यामत की निशानियों में से है कि लोग सिर्फ अपनी जान पहचान वालों को सलाम करेंगे। अब तो वो भी चीजें खत्म होती जा रही हैं कि हेलो हाय उसकी जगह ले रहा है, लेकिन ये ऐसी चीज है जो एक जन्नत वालों की सिफत है। जन्नत वाले एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला करेंगे, ऐसे किया करेंगे, तो फिर हम क्यों जन्नत वालों की सिफत अपने अंदर पैदा ना करें, क्यों सलाम से हम भागें और एलर्जिक हों कि नहीं वो जल हमें लगे कि हम सलाम करेंगे तो पता नहीं लोग हमें छोटा समझेंगे, और हम हाय और हेलो करेंगे तो उसमें हमारी ज्यादा कोई बड़ाई होगी, और कोई अगर हमें ज्यादा कुछ सलाम कर दे तो फिर भी हमें होता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया, या फिर कोई जान पहचान वाला ना हो तो फिर परेशान हो जाते हैं कि ये इसको क्या है हमसे जो ये हमें सलाम कर। तो और फिर आखिर दावाहुम अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कितने प्यारे कलिमात हैं कि जो आखिरी पुकार होगी ना जब एक दूसरे से जुदा होने लगेंगे, बस हम कोई दूसरे को मिलने गया तो पहले मिलते ही क्या करेगा सलाम, और उसके बाद जितनी देर वो बैठे रहेंगे बातें करते रहेंगे मुसलसल, यानी उन बार बार उनके मुंह से यही निकलेगा सुभानकल्लाहुम्मा सुभानकल्लाहुम्मा, और ऐसे जारी रहेगा जैसे सांस चल रही है। और जब एक दूसरे से जुदा होने लगेंगे, एक दूसरे से दूर होने लगेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे। तो देखिए दुनिया में भी हमें ये सिखाया गया कि खाना खत्म हो तो फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह करें, जब आप टॉयलेट से निकलें अपनी हाजत पूरी करके तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह करें, आपको जो कोई नेमत मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह करें। तो अहले जन्नत की जुबानों पे तो हर वक्त ही सुभानकल्लाहुम्मा और अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा, इसलिए हर वक्त नेमतों में होंगे ना हर वक्त, और सोच सोच के नहीं बोलेंगे। जब दुनिया में हमें अपने आप को रिवाइंड करना पड़ता है, कहते हैं वो तो भूल ही गया मुझे, ये तस्बीह कैसे याद रखूं कि मैंने तस्बीह करनी है, सुभान अल्लाह वहां पे कोई रिमाइंडर नहीं चाहिए होगा ना कोई मुश्किल होगी, इसलिए कि शुक्र गुजारी का वो एहसास होगा ना, जन्नत में जाएंगे ही वो लोग जो शुक्र गुजार होते हैं। अगर शुक्र गुजारी इंसान में आ जाए तो फिर वाकई अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त उसकी जुबान पे जारी रहे। जिसको दुनिया में भी शुक्र गुजारी आ जाती है ना, फिर नेमतों पे नजर रखता है तो फिर वो इसी तरह के कलिमात बोलता। तो अहले जन्नत की गुफ्तगू आपने सुनी कि कैसी होगी उनकी, उनकी बातें कैसी होंगी। और दुनिया में भी जब हम कोई बात खत्म करने लगते हैं कोई अच्छी बात, तो फिर कहते हैं ना आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो भी इसी से ही है। बोलते हैं आपने किसी के खतीब को सुना हो कभी कि एंड में ये कह रहे होते, वो यहीं से लिया गया। स्टार्ट सुभानकल्लाहुम्मा कि अल्लाह ताला को हर ऐब हर कमी हर कमजोरी से पाक होने का जिक्र, और एंड अल्हम्दुलिल्लाह से कि अब उसकी तारीफ उसकी बुजुर्गी उसके आला कमाल का इसका जिक्र, तो दोनों चीजें आ गई कि वो हम्दो सना का मुस्ताहिक है, वो एंड में आ गया। सुभान अल्लाह कितना प्यारा इनकी गुफ्तगू कितनी प्यारी है। अच्छा एक और बात आपको बता दूं कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस में भी है कि यानी कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कुछ मांगता नहीं है बस कुछ जिक्र करता है, उसी से अल्लाह ताला उसकी यानी हाजत पूरी कर देते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जब कोई तकलीफ हो या बेचैनी पेश आए तो ये दुआ करा कर, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم آسان سی دعا ہے, کیونکہ سب میں لا الہ الا اللہ تین کلمات ہیں, تینوں میں لا الہ الا اللہ شروع میں اور اس کے بعد پہلی دفعہ میں العظیم الحلیم, دوسری دفعہ میں رب العرش العظیم, تیسری دفعہ میں رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تو یہ بے چینی اور تکلیف کی, اب اس میں دیکھیں کچھ بھی نہیں مانگا, کچھ بھی نہیں مانگا, بس ایک ذکر ہے, لیکن اس کو دعائے کرب کہا گیا. صالحین جو تھے نا اس کو تکلیف کے وقت کی دعا کہتے تھے, کہ مصیبت پریشانی کے وقت یہ کلمات دعا کے مانگا کرتے تھے. تو اسی لیے یہ جو یہاں پہ اگر کسی کو نہیں بات سمجھ آئے کہ سبحانک اللہم سے کیا مطلب دعا مانگنے کا تعلق ہے, تو یہ بات ہے کہ بعض دفعہ بعض ایسے کلمات ہیں جو مانگنے کے لیے کافی ہیں, یعنی مانگنے کی بھی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی اس کے بعد. تلاوت یہاں تک سن لیں پھر آگے چلیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم, قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر, ما من شفيع إلا من بعد إذنه, ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا, إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط, والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب, ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون, أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم, تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم, دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام, وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
اگلی آیت جو ہے اس کا پہلے شان نزول دیکھ لیتے. یہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو قریش تھے, وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے, تو اب یہ تو آخرت کے منکر تھے, تو ہنس کے کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو عذاب ابھی لے آؤ نا. جب عذاب سے ان کو ڈرایا جاتا تھا تو عذاب کو تم مانتے نہیں تھے, آخرت کو مانتے نہیں تھے, قیامت کو بھی مانتے نہیں تھے. اچھا جس کے عذاب کی تم بات کرتے جلدی کیوں نہیں لاتے؟ نظر بن حارث نے کہا تھا, یا اللہ اگر یہ بات سچی ہے نا تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی سخت عذاب بھیج دے ہمارے اوپر. تو یہ آیت اصل اس میں تو وہ منکرین جو تھے ان کو خطاب کیا گیا, لیکن جو عذاب کا مطالبہ کرتے تھے, جو عذاب مانگتے تھے, لیکن اس کے علاوہ بھی وہ مسلمان بھی اس میں شامل ہیں جو کسی رنج وقت میں, کسی غصے کے وقت میں اپنے مال اور اولاد کے لیے بدعا کرتے ہیں نا, ان کے بھی یہاں پہ کو بھی بتایا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ, اور اگر جلدی دے دے اللہ किसको, लिन्नास लोगों को, क्या जल्दी दे दे, अशर्रा बुराई। अगर अल्लाह ताला लोगों को बुराई जल्दी दे दे, इस तेजालाहुम जल्दी मांगना उनका, जब लोग मांगते हैं बुराई को, कि जैसे अब ये कह रहा है कि अल्लाह हम पे आसमान से पत्थर बरसा दे, हम पे ऐसे हो जाए अगर ये सच्ची है तो, और क्यों नहीं लेकर आते अजाब, आ जाए हमारे पर अजाब, ले आओ अजाब को। अगर अल्लाह ताला जल्दी से इनका ये मुतालबा, इनकी जो बुराई के लिए दुआएं हैं, मुसीबत के लिए दुआएं हैं, इनको जल्दी दे दे, यानी कबूल कर दे, कबूल कर ले, दिल खैरी भलाई को लिकुदिया इलैहिम अजलुहुम, जैसे भलाई के लिए जैसे जल्दी मांगते हैं, जैसे भलाई को जल्दी मांगते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला बुराई इनको देना शुरू कर दे जो ये अपने लिए मांगते हैं, तो लकुदिया इलैहिम अजलुहुम, तो अलबत्ता पूरी कर दी जाती इनकी तरफ इनकी मोहलत अमल, यानी इनकी तो फिर मौत ही आ चुकी होती। यानी ये तो अल्लाह ताला का सबर है कि लोग इतने हमाकते करते हैं बाज दफा के वो फौरी चाहते हैं, जैसे जैसे चाहते हैं ना, जैसे अल्लाह ताला से खैर को चाहते हैं, इसी तरह शर मांग लेते हैं। अगर अल्लाह ताला उनके मांगने पे उनको शर भी वैसे ही दे जैसे खैर के लिए वो जल्दी चाहते हैं, जल्दी जल्दी हमें ये जो आज मैंने रात को दुआ की है सुबह बस पूरी हो जाए, आज मैंने दुआ की है तो कल पूरी हो जानी चाहिए, अगर नहीं पूरी हुई तो मैं मायूस होने लग पड़ू, तो ये जैसे मैं खैर के लिए चाहते ना जल्दी से बस पूरी हो जाए, अगर इसी तरह अल्लाह ताला शर देने में इसी तरह जल्दी कर देता तो कोई जमीन पे बाकी ना बचता। कई दफा इंसान जुबान से ऐसी बदुआएं मांगता है, ऐसी चीजें मांग लेता है कि जो उसके अपने लिए, अपने माल के लिए या अपनी औलाद के लिए भी, बार दफा माए ऐसी बुरी बात कर देती है, तो अगर अल्लाह ताला उन बातों को फौरी पूरा कर दे तो क्या बने हमारा अल्लाह ताला। लेकिन वो इंसान तो इतना जल्दबाज है ना, वो तो बस जल्दी चाहता है हर चीज, तो अगर अल्लाह ताला जल्दी दे दे लोगों को बुराई, जैसे वो जल्दी मांगते हैं भलाई को, तो कोई भी बाकी ना रहे। कितना फर्क है जन्नत वालों की बातों में और उनकी पुकार में और दूसरे लोगों की जुबान में, यानी इंसान बोलते वक्त भी सोचता नहीं है कि वो अपने लिए क्या मांग रहा है। बाजार में एक हदीस आती है कि अपनी जान और माल पर बद्दुआ ना करो, ऐसा ना हो कि किसी कबूलियत के साथ मुआफ़त कर जाए, यानी वो ही कबूलियत की घड़ी हो और उसी वक्त आपको मुंह से बद्दुआ कर रहे हैं और बद्दुआ कबूल हो जाए। तो मुसीबत बुराई अजाब के लिए कभी भी नहीं बद्दुआ करनी चाहिए, चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना आए। हाँ, खासतौर पर माओं को बच्चों के लिए इस तरह की बद्दुआएं नहीं करनी चाहिए। आप देखेंगे इमाम काबा ने जो सुदैस है उन्होंने बताया कि एक लड़का था तो बड़ी शरारतें वगैरह कर रहा था, तो शरारतों पे माँ को गुस्सा आ गया, तो माँ ने कहा कि अल्लाह तुझे जा, अल्लाह तुझे इमाम काबा बनाए। गुस्से में भी वो दुआ दे रही है, अल्लाह जाए तुझे इमाम काबा बनाए। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहने लगे, और वो लड़का आज मैं तुम्हारे सामने। कभी इंसान जो है ना ऐसी बात को मुंह से निकाल देता है वो पूरी हो जाती है, तो उस वक्त भी गुस्से में अच्छी ही बात करें। अब हम कह देते अल्लाह तेरा बेड़ा गरक करे, तो कितनी बुरी बात कर दी। बेड़ा गरक होने का पता है क्या मतलब है, गरक हो जाए, इससे बेहतर आप कहें अल्लाह तेरा बेड़ा तर जाए, पार हो जाए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजों को चेंज करने से वो क्या पता, अगर उस वक्त अपने मुंह से अपनी औलाद के लिए कोई बद्दुआ कर ली या अपने कारोबार के लिए या माल के लिए, तो वैसे ही हो जाए पूरी उस वक्त। ये तो अल्लाह ताला की कितनी हमारे पर करम है, उसकी शफकत है, उसकी मेहरबानी है, तो वो जल्दी जल्दी नहीं कर लेता, वरना तो इस तरह जल्दी करने लगे तो कोई चीज बचे ही ना यहाँ पे। तो हम छोड़ देते हैं उन लोगों को जो अल्लाह की मुलाकात को, जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, फी तुगयानिहिम या महून, तुगयानी में भटकते फिरे। यानी तुगयानी क्या है, ये कि इंसान अपने आप में नहीं फिर रहता। सरकशी क्या चीज होती है, सरकशी कब आती है, ये सरकशी वही चीज है ना, सरकश इंसान कब होता है, जब ना शुक्रापन होता है, जब अल्लाह ताला से मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती तब वो सरकश होता है। वो ही सरकश हो सकता है जो समझता है कि मैं आजाद हूँ, कौन मुझे पकड़ने वाला है, वो पकड़ के दिखाए मुझे, मैं जो मर्जी करूं, ये सरकशी है ना, इसी को तो सरकशी कहते हैं, देख लेंगे कौन मेरा कुछ कर सकता है, ये सरकशी है। जिसको पता हो कि मैंने अल्लाह के सामने खड़े होना है वो सरकश हो ही नहीं सकता। देखिए ना, जो इतनी बड़ी एक पावर को जानता है कि वो मुझे ले आएगा पकड़ के, मैं कितना भी भागूं कहीं नहीं भाग सकती, कहीं नहीं जा सकती, वो सरकश हो सकता है भला? तो अल्लाह ताला कहते हैं, फिर हम जो ऐसे होते हैं ना, जो अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद ही नहीं रखते, फिर छोड़ देते हैं अल्लाह ताला उनको उनकी सरकशी में, भटकते फिर हैं, ठीक है जाओ तुम इसी के अंदर पड़े रहो। जो ये अल्लाह ताला से अपने आप को समझता है कि मैं, मेरी मुलाकात नहीं होनी, मैं आजाद हूँ, अल्लाह ताला की ये एक सजा है उसके लिए। और जो ये जानता है कि हर ताकतवर से ऊपर एक ताकतवर है जिसके हाथ में मेरी जान है, वो सरकशी कर ही नहीं सकता, उसकी सारी सरकशी खत्म हो जाती है। तो इस आयत से हमें क्या पता चला कि इंसान जैसे हरीस होता है खैर के लिए, इसी तरह जब वो शर मांगता है तो अल्लाह ताला उसको शर उसी तरह दे देना, उसी तरह जल्दी दे दे जैसे वो चाहता है अपने लिए खैर के मुझे जल्दी मिले, तो क्या बने तुम्हारा फिर। और इंसान बार दफा बुराई ऐसे मांगता है जैसे भलाई मांगनी चाहिए। मुजाहिद ने इसी आयत की तफसीर में कहा है कि जब कोई शख्स अपनी औलाद पर गजबनाक हो तो उनके खिलाफ ये दुआ ना करे कि अल्लाह इनको बरकत ना दे, अल्लाह इनके लानत कर दे, वरना अगर अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल कर दी तो वो उनको हलाक कर देगा। माफ करे हमें। वइदा मसल इंसाना दुर्र, जब छू जाती है इंसान को कोई तकलीफ, दआना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमन, तो क्या करता है, हमें पुकारता है अपने लेटे हुए, बैठे हुए, खड़े हुए, हर टाइम। फिर इसको देखो कैसे ये अल्लाह की तरफ झुक के आता है, कैसे उससे फरियादें करता है, कहीं यानी उठे बैठे लेटे का मतलब, पुकारने का मतलब क्या है, कहीं इसको करार ही नहीं आ रहा। रातों को भी रब को पुकारता है, कहीं बैठा है तब भी पुकारता है, खड़ा खड़ा भी दुआएं कर रहा है। जब कोई परेशानी आ जाती है, अब तो कोई परेशानी कुछ भी हो सकती है, चाहे फिजिकली कुछ हो, चाहे मेंटली कोई परेशानी हो, कोई ऐसी गम हो, कोई ऐसी चीज हो जो उसको आती है ना, फिर देखो इसका खुशू का हाल। ये इंसानी, अक्सर इंसानों की जो कैफियत है ना वो यहाँ पे बयान की गई है कि जब परेशानी आती है फिर देख लें इंसान नमाजों में भी रेगुलर हो जाता है। जो कभी नहीं पांचों नमाजें पढ़ते वो भी पढ़ने लगते हैं, बाहर जो तहज्जुद नहीं पढ़ते तो तहज्जुद के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर कहीं चैन नहीं आता, फिर वो दुआएं करता है हर टाइम। और फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु मर्रा कअल्लम यदउना इला दुर्रिन मस्सहु, तो जब हम हटा देते हैं उससे तकलीफ को तो ऐसे चल पड़ता है जैसे इसने कभी हमें पुकारा ही नहीं किसी तकलीफ में जो पहुंची हो इसको, जैसे कोई वास्ता ही नहीं था। देखा है आपने, जब कई दफा बच्चों के एग्जाम होते हैं, इतनी दुआएं कि बस उठे बैठे लेटे बस दुआएं हो रही। जो ही रिजल्ट आया उसके बाद ये नहीं कि शुक्राने के नफल पड़े, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने, उसके बाद वो पार्टियां, वो मजे, वो फन, वो ऐसे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और पता नहीं क्या क्या, और भूल ही जाते हैं कि कभी कोई मुश्किल आई भी थी। तो देखा कि हम कहते हैं कि बस ट्रीट दें और बस इतना हल्ला गुल्ला हो जाता है कि वो अल्लाह का नाम ही भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि कभी हमने पुकारा भी था। कैसा है इंसान ना शुक्रा, कभी ऐसे नहीं लगता कि इसको कभी कोई दुख पहुंच जाता, इसका अल्लाह से कोई वास्ता था, उसको ये नहीं सोच आती कि दोबारा भी मुझे अल्लाह से कोई काम पड़ सकता है, बिल्कुल ही भूल जाता है, अजनबी हो जाता है। कितनी सही बात खोली गई है। इतने इंसान फिर अपनी वो जो उसको जब मुसीबत जाहिर है दूर होती है, इतना वो मशगूल हो जाता है खुशी मनाने में। अब मसला है कि किसी ने कोई टेस्ट कराए, जितनी देर वो टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया उस वक्त तक मुसीबत पड़ी हुई थी, ऐसे था कि बस कहीं चैन नहीं। जो ही टेस्ट रिजल्ट आ गया उसके बाद फिर अपनी जिंदगी में ऐसे मगन हो गए, अल्लाह को ऐसे भूल गए कि अल्लाह कहाँ और क्या, और अब ना कोई नमाजों का होश ना कुछ, अब कहाँ वक्त है हमारे पास। वापस फिर उसी रविश पे लौट जाते हैं। इतनी जल्दी इंसान भूल जाता है, इतनी जल्दी भूल जाता है कि अभी मेरे ऊपर क्या गुजर रही थी। हमने इस चीज से अपने आप को बचाना है। हमें अगर कोई ऐसा करे हमारे साथ, सोचें कि जब मतलब हो, जब कुछ चाहिए हो, तो फिर वो इतना मिनमिनाते हुए हमारे पास आगे पीछे फिरे, और जो ही उसका मतलब पूरा हो जाए तो उसका कोई अता पता ही नहीं कि कहाँ है, तो हम क्या कहते हैं उसके लिए, अच्छा लगता है? लेकिन जब हम खुद ही ये रवैया अल्लाह ताला के साथ करते हैं, जैसे कि पता नहीं हमें कभी काम ही नहीं पड़ना, हालांकि एक एक सांस उसकी इजाजत से चल रही है। और याद करें कोई ऐसा वक्त जो जिंदगी में कभी मुश्किल आई थी, फिर उसके बाद आपने क्या किया। ये नहीं कहा गया कि मुश्किल वक्त में अल्लाह को ना पुकारो, ये कहा गया कि ऐसे ना हो जाओ कि बस जब काम खत्म हो गया तो उसके बाद आंख ही नहीं मिलानी। याद करें कोई इम्तिहान, कोई ऐसा आपका टेस्ट हुआ हो, कोई ऐसी चीज हो, क्या रवैया था उस वक्त। और उसके बाद जब आप पास हो गए, या जब वो मुश्किल टल गई, या जो मुसीबत दूर हो गई, फिर कितनी दफा आपने शुक्र अदा किया। क्या फिर वो जब मुश्किल आती है तो वजीफों की किताबें भी निकल आती हैं, 125,000 दफा भी पढ़ रहे हैं, लोगों को भी बुला लिया, लोगों की भी जान मुश्किल में डाल दी, अब तुम्हें भी बैठ के पढ़ो यहाँ पे, अब हमारी ये मुश्किल दूर हो। फिर कितनी दुआएं हो रही हैं, फिर कितने लंबे क्याम हो रहे हैं, फिर नमाजों में कितना खुशू है। और उसके बाद क्या हुआ, क्या उनमें से कोई चीज बाकी रही? सोचे, जब नौकरी नहीं मिल रही थी, या जब शादी नहीं हो रही थी, या जब किसी का बेटा नहीं हो रहा था, या जब औलाद नहीं हो रही थी, कैसे हुआ करते थे, फिर उसके बाद कैसे हुए। ऐसे भूल जाते हैं जैसे कोई अल्लाह से वास्ता ही ना हो, अजनबी बन जाते हैं। कज़ालिक ज़ुय्यिना लिल्मुसरिफीन मा कानू यअमलून, इसी तरह खूबसूरत बना दिए गए हद से बढ़ने वालों के लिए जो थे वो अमल करते। क्या हद से बढ़ते हैं, हद से क्या बढ़ना है इनका, इनके लिए ये हद से बढ़ना जो है ना, ये अमल इनके लिए खूबसूरत बना दिया गया। यानी अब इनको ये बुरा भी नहीं लगता कि हमने ऐसा कोई बुराई की है, ये नहीं बुरा लगता इनको। क्या था उनका इसराफ, इसराफ क्या होता है, हद से निकलना। ठीक है, अब हद से कब ये निकलते हैं, यानी जब मुसीबत आई तो जजा फजा कर रहे हैं, उल्टे सीधे हो रहे हैं, हाय वाय कर रहे हैं, उसमें भी हद से निकल गए। जब मुसीबत टल गई तो इतने अकड़े ऐसे हुए जैसे कि पता नहीं इनको कभी अल्लाह से कोई ताल्लुक ही नहीं था, उसमें भी हद से बढ़ गए। तो जिनकी जिंदगी इतनी एक्सट्रीम्स पे रहती है ना, मुश्किल वक्त में रोना धोना बंद नहीं होता, अच्छा वक्त आए तो बिल्कुल ही गाफिल हो जाते ये, और उसके बाद भी एहसास नहीं है कि ये कोई हम गलत कर रहे हैं। अक्सर देखा हो ना ऐसे होता है, और फिर उसके बाद अपनी इस चीज को भी बड़े फखर से बयान करते हैं, चोरी और सीना जोरी, जुयीना खूबसूरत बना दिए गए। शैतान भी वसवसे डालता है कि नहीं जो कर रहे हो ना बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बुराई बुराई नहीं लगती। इंसान मुतमईन रहता है, नहीं हमने उस वक्त जब हमारे पर मुश्किल आई थी कितनी मैंने दुआएं मांगी थी, कितने मैंने वजीफे किए थे ना। हाँ तो फिर अब उसके बाद क्या हो गई, उसके बाद क्या किया, इसका नहीं सोचते, उसी के ऊपर प्राउड होते रहे कि हमने देखो कितना माना था, हमने कितना किया था, हमने क्या किया था। वलकद अहलकनल कोरोना मिन कबलिकुम, देखो तो सही हलाक कर दिया हमने कितनी कौमों को तुमसे पहले, लम्मा जलमू, जब उन्होंने जुल्म किया तो देखो हमने कैसे उनको हलाक कर दिया। देखते नहीं आद को, देखते नहीं समूद को, देखने नहीं और कितनी कौमों को। वजाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति, आए थे उनके पास भी रसूल खुले दलाइल लेके, मा कानू लियुमिनु, लेकिन वो ऐसे थे कि टस से मस नहीं हुए, वो ईमान नहीं लाके उन्होंने दिया। कज़ालिक नजज़िल क़ौमल मुजरिमीन, इसी तरह हम जजा देते हैं मुजरिम कौम को, मुजरिमों का अंजाम ऐसा ही होता है। चाहे हम आज कह दें कि नहीं ये मसला हुआ, सैलाब आ गया इस वजह से हुआ, सुनामी आ गई इस वजह से हुआ, जलजला आ गया इस वजह से लोग मर गए, हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं मुजरिम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जब उनके पास पैगाम आ जाता है, उनके पास दलायल आ जाते हैं, वो फिर भी नहीं मानते, اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ان کے ظلم کے ظلم یہاں پہ کیا ہے؟ کیا ظلم انہوں نے کیا؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. یعنی انہوں نے جب شرک کیا نا, یا دوسرا اللہ تعالیٰ کی حکموں کی نافرمانی کرنا بھی ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے ان کو پکڑا, اس سے عبرت نہیں لیتے تم. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم, پھر ہم نے تم کو بنایا جان نشین زمین میں ان کے بعد. کن کے بعد؟ وہ جو قرون تھی, جو بستیاں تھیں جو پہلے ہلاک ہو گئی. دیکھیں ایک کے بعد ایک آتے رہے, ایک کے بعد ایک آتے رہے, اور اب آ گئی تمہاری باری. اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا جان نشین بنایا, یعنی اب ان کے بعد تمہارے اوپر ریسپانسیبلٹی آئی, تمہیں اللہ نے ان کا قائم مقام بنایا, تمہیں زمین میں خلافت دی. کس لیے؟ تاکہ اب تم عیش کرو, اب تم اللہ کو بھول کے زندگی گزارو, اب تم دنیا میں ہی مگن ہو جاؤ. کس لیے؟ نہیں, اس لیے کہ لننظر کیف تعملون, تاکہ ہم دیکھیں کس طرح تم اب کرتے ہو. ان کو تو ہم نے ختم کر دیا, اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا. اب تمہیں بھیجا ہے, اب تمہارا امتحان ہے, تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا, اب تمہارا امتحان لیا جائے گا. انہوں نے تو جو کیا وہ ختم ہو گئے, تم اب کیا کرتے ہو, تم کیسا عمل کرتے ہو, تم پچھلی امتوں سے سبق لے کے اپنی اصلاح کرتے ہو, یا تم بھی وہی کرنا شروع جاتے جو وہ کر رہے تھے. اسے کیا پتا چلا کہ دنیا میں اگر کسی کو خلیفہ بنایا جاتا ہے, یعنی دنیا میں اگر کسی کو اقتدار بھی ملتا ہے, حکومت ملتی ہے, وسائل ملتے ہیں, تو یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے, یہ تو ایک بڑی ذمہ داری ہے, بہت بھاری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ اب تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. کہہ دیا گیا نا تاکہ ہم دیکھیں کس طرح تم عمل کرتے ہو. جیسے کسی کو کہہ دیا جائے یہ آپ کی مووی بنا رہے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ پھر آپ نے کیا 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 ہے, کیمرے آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں, انسان کتنا الرٹ ہو جاتا ہے, میری مووی بن رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں گے اب تم کیا کرتے ہو. کبھی ہم نے ان نظروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی عمل کیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھوں گا کہ تم کیا کرتے ہو. اب تمہاری باری آ گئی ہے, ان کی باری ختم ہو گئی, ان کی ٹرن ختم ہو گئی, وہ فیل ہو گئے, اب تمہاری باری. ہم ان کو تو بہت برا برا کہتے ہیں, وہ تو ایسے کرتے تھے, وہ یہ کرتے تھے, ان کے یہ انجام ہوئے, پھر یہ ہوا, سارا رٹا ہوا. لیکن ہم کیا کریں, ان کی عمل کی مدت ختم, ہماری اب شروع. یہ کمرہ امتحان ہے, اس میں باریاں لگی ہوئی ہیں, کوئی داخل ہو رہا ہے اور کوئی یہاں سے باہر جا رہا ہے. ایک طرف انٹرنس ہے, دوسری طرف ایگزٹ ہے. اب یہاں پہ ہم انٹر ہو گئے ہیں, وہ جا چکے ہیں, ہمیں اب سچویشن دی جاتی ہیں, ہمیں اب سامان دیا جاتا ہے, ہمارے پاس اتنے اتنے گھنٹے ہیں. اس ٹائم کے بعد ہم بھی اس کمرہ امتحان سے آؤٹ ہوں گے, کوئی اور آ رہا ہوگا. ہم نے یہاں پہ بہترین کام کر کے دکھانا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیات روشن, تو کیا کہتے ہیں؟ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, تو وہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. پھر وہی بات آ گئی نا, جن کو امید نہیں ہے ہماری ملاقات کی, یہ ملاقات ہی اللہ سے جو ہے یہی سیدھا رکھنے والی چیز ہے. اگر اس کی امید نہ رہی تو پھر یہ حال ہو جاتا کہ پھر یہ کہتے ہیں یہ آگے سے, قرآن غیر ہذا او بدل ہو, لے کے آؤ کوئی قرآن اس کے علاوہ, یہ قرآن نہیں ہمیں چاہیے, یا کچھ بدل کے لے کر آؤ, چینجز کر کے اس میں لے کر آؤ. کیوں ایسے کیوں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو بدل کے لے کر آؤ؟ اس لیے کہ یہ قرآن یہ تو بہت سخت ہے, اس کے اندر تو بڑی سخت باتیں ہیں, یہ تو ہم کر نہیں سکتے, یہ تو آج چل نہیں سکتا, ہم تو نہیں یہ کر سکتے, اس کو بدل کے لے کر آؤ. ایک وہ کافر کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے اس کے اندر تو پتہ نہیں ہمارے بتوں کی توہین ہے, ان کو ایسے کہا گیا اور ایسے کہا گیا, اس کو یا تو چینج کر کے لے کر آئیں یا کوئی اور لے کر آئیں قرآن. کچھ گیو اینڈ ٹیک تو ہونا چاہیے نا, یہ تو بڑا ریجٹ ہے قرآن, نعوذ باللہ. کچھ ہمارے بتوں کی مانے, کچھ ہم آپ کی مان لیتے. आज भी आवाजें उठती है ना इस कुरान में जो है वो आज नहीं चल सकता, यानी आप चेंज करके लेकर आओ, कुछ आज के मुताबिक बना के लेकर आओ। तो अब कुरान को तो चेंज करते कर नहीं सकते, तो इसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट करके ले आते हैं। ये आज सूद भी हलाल हो गया, आज पर्दे के भी अहकाम की कोई जरूरत नहीं है। ये तो उस जमाने में थे मुनाफिक, देखते थे औरतों को, मुनाफिक होते थे ना तो वो देखते थे औरतों को, तो इसलिए वो उस जमाने में था। और सूद का क्या, वो तो उसी जमाने में सूद होता था, ये तो आज का सूद तो है ही नहीं है वो सूद। हर चीज को यानी बदल के रखती, अपने मुताबिक, खुद नहीं बदलते कुरान को बदल देते। अब कुरान को कैसे बदलना, अल्फाज तो इसके बदल नहीं सकते, जाहिर है अल्लाह ने हिफाजत की भी, तो अपनी अपनी तफसीरें कर ली हर एक ने। हालांकि तफसीर इसकी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी, अगर उसके साथ रहोगे तो तभी हक पे रहोगे। तो ये तो वो कहा करते थे, आज भी कोशिशें होने लगी। कुल मा यकूनु ली अन उबदिलहु मिन तिलकाई नफसी, ए नबी अब साफ इनके इनसे कह दें ये मेरे लिए नहीं है जायज, यहाँ और ना ही मेरे बस में है कि मैं बदल दूं इसको अपने नफ्स की तरफ से। तिलकाई नफसी यानी तरफ से अपने नफ्स की, मैं अपने पास से इसको बदल दूं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मुझे ये इख्तियार ही नहीं। अल्लाह तआला ने सूरह हाका में नहीं फरमाया कि रब्बे रहीम की तरफ से अगर नबी हमसे मंसूब करके कुछ बातें लिखवा देता तो हम इसका दायां हाथ पकड़ लेते और इसकी रगे गर्दन काट डालते। कितनी सख्त आयत है ये कि नबी के क्या मिजाज कि वो कोई कुछ बदले इसके अंदर से। इन अत्तबियु इल्ला मा यूहा इलैया, ए नबी आप इनसे कह दें कि मैं तो नहीं पैरवी करता मगर उसी की जो वही किया जाता है मेरी तरफ, मैं तो खुद इसका पाबंद हूँ, मैं तो खुद इसकी पैरवी करता हूँ। रसूल का मकाम यह है कि वो खुद भी वही की पैरवी करे। इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, अगर अल्लाह ताला ने अपने नबी से ये फरमा दिया ना कि ए नबी आप इनको ये कह दें तो हम फिर सोच लें कि हम कहाँ खड़े हैं, कि ए नबी आप इनसे कह दें मैं तो डरता हूँ अगर मैंने नाफरमानी की अपने रब की बड़े अजाब के दिन से, बड़े दिन के अजाब से मैं डरता हूँ कि अगर मैंने नाफरमानी की तो वो अजाब मुझे पकड़ लेगा, कहीं मैं उस बड़े दिन के अजाब का मुस्तहिक ना हो जाऊं। सोचे अगर वो डरते हों नाफरमानी करने से तो मैं और आप कैसे बच सकते हैं, हम कैसे जुर्रत कर सकते हैं अल्लाह की नाफरमानी की। फिर किसको इजाजत हो जा सकती कि वो कुछ भी करे, अगर वो इतने बड़े मकाम पे पहुंच के भी अल्लाह ताला उनको फरमा रहे हैं कि आप ये कहें बात, कुरान में है ये बात, आप ये बात कहें ए नबी कि मैं भी डरता हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम सब में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। तो हम अगर इतने अदना से लोग होके और ढिटाई के साथ चीजें करते रहे और जैसे हमें कुछ भी चीज की फिक्र ही नहीं और हम कहें अल्लाह तो गफूर रहीम है बस ठीक है, तो हमें ये बात भूल जाती है कि अगर हमने नाफरमानी की तो बड़े दिन का आजाब हमें पकड़ लेगा, ये बात नहीं याद रहती। قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ, कह दीजिए ए नबी आप इनको कह दें अगर अल्लाह चाहता तो मैं पढ़ ही नहीं सकता था इसको तुम पे, मैंने क्या बदलना है या मैं, ये तो अल्लाह की तरफ से ये वो ही जो कहता है मैं वो पढ़ता हूँ, अगर अल्लाह चाहता तो मैं तो तिलावत भी नहीं कर सकता था। वला अदराकुम बिही, और ना मैं खबर देता तुमको इसकी, ये तो अल्लाह ही है इसका मतलब जो मुझसे तिलावत करा लेता है, वरना आगे जैसे आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मीद थे ना, आपने तो पढ़ना लिखना नहीं सीखा ना, ऐसी बातें कभी पहले की थी, तो ये अल्लाह ही है कि जो तिलावत कराता है। इसका मतलब है कि जब तक अल्लाह ना चाहे ये कुरान इसको कोई तिलावत भी नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला किसके लिए किसको देता है कि वो तिलावत कर सके, किसको तौफीक देता है, जिसके अंदर तलब होती है। नबी से कहला दिया गया कि मुझ पे इतराज कर रहे हो, मुझे कह रहे हो कि इसको चेंज करके ले आओ, मुझे कह रहे हो कि कोई और कुरान ले आओ, मुझे क्यों सताते हो, मैं कैसे इसको बदल सकता हूँ, ये सब तो उसकी मर्जी से हो रहा है, मैं कुत्ता नहीं बना के ला सकता, मैं तो कोई अपनी मर्जी से थोड़ी पढ़ रहा हूँ कि मैं जो मर्जी पढ़ता जाऊं, जो मर्जी तुम्हें सुनाता जाऊं। ये तो अल्लाह ने ही पढ़वाया है मुझे। فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ, और तो तहकीक मैं तो ठहरा ना हूं तुमने एक उम्र तक इससे पहले, यानी तुम तो मुझे देखते रहे हो, मैं कहां पढ़ा लिखा था, मैंने 40 साल तुम्हें गुजारे, मैंने कहां कभी ऐसा कलाम कहा था, मैं किसी उस्ताद के आगे बैठा था, मैंने किसी से पढ़ना लिखना सीखा था, मैंने ऐसी बातें कभी की थी। तो मैं कोई अपनी तरफ से तो लेकर नहीं आ जाता कि मैं आज कुछ लेकर आ जाऊं, कल कोई और किताब ले आऊं, आज इसमें से कुछ बदल दूं, आज इसमें से कुछ कम कर दूं, मैं कैसे कर सकता हूं। ये तो अल्लाह का कलाम है, कहने का ये मतलब है कि ये तो अल्लाह का कलाम है, मैं कहां से इसमें चेंजेस करूंगा। मैं तो तुम्हारे अंदर रहता रहा हूं, तुम मुझे देखते रहे हो, तुमने देखा है कि मुझे ऐसी कोई बात ही नहीं करनी आती थी, मैं जो पढ़ के सुनाता हूँ वो वही है जो अल्लाह ताला मेरी जुबान से कहलवाता है। हाँ, खुद सोच ले, लोग कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गैब की बातें बताते थे और गैब जानते थे, जो अल्लाह ताला ने बता दिया बस वो ही बता सकते थे, मैं नहीं खबर देता तुमको इसकी, मेरे पास कोई खबरें नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से ही है। फला ताकिलू, क्या तुम फिर भला अकल नहीं रखते? और ये कुरान की ऑथेंटिसिटी में बहुत बड़ी दलील है कि 40 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा कलाम नहीं कहा, यकदम फिर एक के बाद एक सूरत, एक के बाद एक आयत, इससे पता चलता है आपने खुद नहीं घड़ी है, बचपन जवानी एक अरसा उन्हीं में रहे थे, लोगों के सामने ही बातें करते रहे थे ना। और आज तक भी अगर आप हदीस पढ़े तो उसके अल्फाज में और कुरान के अल्फाज में जमीन आसमान का फर्क है, आपको खुद पता चल जाता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है और ये कुरान के अल्फाज है। فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, और फिर कौन ऐसा, इससे बड़ा कौन जालिम हो सकता है जो अल्लाह पे झूठ कर ले। ये उसी की कंटिन्यूएशन है उसी बात की कि तुम मुझे कह रहे हो बदल के ले आओ, ये करके ले आओ, ऐसे करो, कोई और किताब ले आओ, मैं तो पहले भी नहीं कुछ जानता था, मैं तो खुद तुम्हारे अंदर उम्र गुजारी, मैं तो ये बातें अल्लाह की तरफ से ही आती है तो वो बोल रहा हूँ, और इससे बड़ा तो जालिम कोई भी नहीं हो सकता जो अल्लाह पे झूठ बांध ले और कज़ब भी आयती ही या उसकी आयात को झुटलाए। यानी फिर अगर मैं कुरान घड़ के ला रहा हूँ ना, खुद अगर ला रहे हो तो फिर ही बदल सकते हैं ना, अल्लाह की चीज को तो नहीं बदल सकते। अगर मैं खुद घड़ के ला रहा हूँ तो मुझसे बड़ा फिर जालिम कोई नहीं हो सकता। और वाकई अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से किताब है और तुम इसका इनकार करते हो तो तुमसे बड़ा जालिम नहीं कोई हो सकता। ये है दोनों बातें, और कज़ब भी आयती, यानी अब फिर ये अगर अल्लाह का कलाम है और तुम इसको इनकार करते हो, झुटलाते हो उसकी आयतों को, तो इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून, ऐसे मुजरिमों को फिर अल्लाह फला नहीं देता। मुजरिम तो कामयाब नहीं हो सकते, और रसूल अल्लाह का मिशन तो कामयाब हुआ, उसका मतलब है आप हक पे थे ना, आपने नहीं कुरान में एक लफ्ज भी एक हर्फ भी खुद नहीं ऐड किया। वयाबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुरुहुम वला यनफअहुम, और वो इबादत करते हैं उनकी जो ना उनको कोई नुकसान दे सकते और ना नफा दे सकते। और यकूलूना हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, और ये कहते हैं कि ये हमारी सिफारशी होंगी अल्लाह के यहाँ। दुनिया में ये सोचते हैं कि ये हमें सिफारिश करेंगे कयामत के दिन, हालांकि ये तो कोई नफा नुकसान के मालिक ही नहीं, ये उनकी इबादत में लगे हुए। वही जो मैंने आपको अकीदा अभी शिफात का बयान कर दिया कि ये लोग इस गलत अकीदे में, इसी वजह से ये लोग गुमराह हुए हुए थे और इनकी इबादत करते थे कि जब इन्होंने ही हमें बख्शवाना है वहाँ पे, तो इनके आगे झुको, इनसे झालते मांगो। इनका अकीदा यहाँ तक पहुँचा ही इस वजह से था, ये शिफात का अकीदा गलत होने की वजह से। और हमारे मुल्कों में मीजारों पे हजारों लोग हजूम लगे होते हैं वो इसी अकीदे के साथ कि ये हमारी सिफारिश करेंगे, वहाँ पे सजदे भी करते हैं, वहाँ पे दुआएं भी मांगते हैं। फिर जब आखिरत में इतनी बड़ी काम कर लेना इन्होंने तो दुनिया में छोटे छोटे काम तो कोई मुश्किल ही नहीं इनके लिए, तो फिर बच्चे देना किसी को नौकरी दिलाना, किसी को वीजा दिलाना, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं रह गई, जिसने अल्लाह के सामने हमें वहां से निकलवा लेना है तो ये तो छोटे काम है। तो फिर आज भी दुनिया में भी काम हमारे इन्हीं के तो फैल तो होंगे, इन्हीं के से हमें रिस्क मिलता है, इन्हीं की वजह से हम खाते पीते, इन्हीं की वजह से हमारे घर चलते, ये कहते हैं ना, तो आखिरत में भी इनसे ही हमारी हमारा बेड़ा पार होगा। हालांकि देखें ये हम कहते हैं कि कुफारे मक्का का ये अकीदा था, آج وہی عقیدہ ہمارے ہاں آ گیا. جن کی پہنچ ہے وہ بس بچا لیں گے. آپ چاہے وہ کسی کو سمجھ رہے ہوں, ہم کسی اور کو سمجھ رہے ہیں, بات تو یہی کہ ساری مخلوق ہے, مخلوق میں سے کسی کو بھی پکڑ لو, کوئی بھی ما لا یضرہم ولا ینفعہم, نہیں نقصان دے سکتا ان کو نہ نفع دے سکتا, پھر ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں نے بنایا ہوا آسمان یا بتوں نے زمین بنائی ہوئی, ایسا بالکل نہیں کہتے تھے. کہتے تھے اللہ نے بنایا, لیکن وہ یہ کہتے تھے ہاں یہ ہمارے کو نفع نقصان کرا سکتے ہیں, یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشیں کرا سکتے ہیں, یہ وہ کہتے تھے. یہ ابھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا اصل عقیدہ کیا تھا. قل کہہ دیجیے, اتنبئون اللہ, کیا تم اللہ کو بتاتے ہو, اللہ کو خبریں دیتے ہو, بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض, جو نہیں وہ جانتا آسمانوں میں اور جو زمین اور نہ زمین میں, جس بات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ یہ ہستیاں یہ نفع نقصان دے سکتی ہیں, یہ شفا کر سکتی ہیں, اللہ کو نہیں پتا, تم بتانا چاہتے ہو اللہ کو, اب تم بتاؤ گے اللہ کو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, وہ پاک ہے, وہ بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. کتنی صاف صاف طور پہ یہ آیتیں ہیں, پھر بھی یہ نہیں سمجھ آئیں تو پھر کیا کیا جائے ہماری عقلوں کو. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا, لوگ جو تھے نا پہلے انسان سارے ایک ہی امت تھے, بعد میں انہوں نے اختلاف کیا, پھر انہوں نے اختلاف کیا, فَاخْتَلَفُوا, پہلے کیا تھے ایک امت کا مطلب کیا, یعنی پہلے سب مسلمان تھے, توحید پہ تھے سارے کے سارے, آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کے زمانے تک سب توحید پہ تھے. یہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ اگر شرک وغیرہ شروع ہوئے, ان سے پہلے تو سب توحید پہ تھے. اختلاف, انہوں نے پھر اختلاف کیا, اختلاف کا مطلب کیا, شرک کیا. اب یہ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لیکن نوح علیہ السلام تک بڑا زمانہ گزرا ہے, کہتے ہیں 10 صدیاں گزری ہیں, تو اس میں انسانوں میں ظاہر ہے ان کے نسلیں بھی اور آبادیاں بھی بڑی بھی اور انسان کے رنگ بھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہوئے, ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ڈفرینٹ علاقوں میں بھی جا کے رہے, زبانیں بھی ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو گئی ہوں, اور یہ سارے یعنی قبائل بھی بنے, ان کا بھی اختلاف ہوا, مگر اللہ تعالیٰ نے ان اختلافات کی وجہ سے کوئی رنگ کوئی بول چال زبان یا کس علاقے میں رہتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو نہیں کہا کہ یہ مختلف قومیں تھیں, ان ساروں کو کہا امت واحدہ تھی. ہاں جب دین الگ ہوا, جب ایمان کے خلاف انہوں نے شرک شروع کیا تو تب کہا پھر الگ الگ ہو گئے, اختلاف آ گیا. اس کا مطلب اللہ کے نزدیک یہ جو زبانوں کا فرق ہے, یہ جو نیشنلٹیز کا فرق ہے, یہ جو رنگ کا فرق ہے, یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ تعالی کے نزدیک اختلاف کیا ہے, جب کوئی ایک اسلام پہ ہو اور ایک غیر اسلام پہ ہو, یعنی ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم, یعنی دین ایمان مذہب کا جو فرق ہے نا وہ ہے اختلاف, اس کو اختلاف کہا گیا ہے, اس کے اوپر اس کے مطابق گروہ قرار دیے گئے ہیں. ہم نے گروہ کس بنیاد پہ بنائے ہیں, ہم نے ان چیزوں کے بنیاد پہ بنائے ہیں نا, یہ ہمارے ملک کا ہے, چاہے وہ مشرک ہے چاہے وہ ہے, یہ ہمارا اپنا ہے کیونکہ یہ ہمارے ملک کا ہے, یہ ہماری زبان بولتا ہے. اللہ کے نزدیک یہ کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے نزدیک فرق کیا ہے, جب مذہب الگ ہو جاتا ہے تو وہ الگ اور آپ الگ. آج دنیا تو ہمیں بتا رہی ہے کہ تم مسلمان چاہے افریقہ کے ہو, چاہے امریکہ کے ہو, چاہے ایشیا کے ہو, چاہے کہیں کے بھی ہو, تم سب ایک ہو, لیکن مسلمان ابھی تک اس سبق کو سمجھ نہیں سکے. وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہیں کالے اور یہ ہیں گورے اور ہم ہیں پاکستانی اور وہ ہیں انڈین اور وہ ہیں یہ, وہ اپنے آپ کو ایک آج تک نہیں کر سکے. دنیا آج ہمیں کہہ رہی ہے کہ تم ایک ہی ہو سارے. پتہ نہیں ہمیں کیوں نہیں یہ بات سمجھ آتی کہ وہ کہتے ہیں ہم سب ایک طرف ہیں, تم سب ایک طرف, مسلمان سب ایک ہیں اور ہم چاہے ہندو ہے چاہے کرسچن ہے چاہے یہودی, ہم سب ایک ہیں. وہ ایک طرف کھڑے ہو گئے اور مسلمان کو ایک طرف کرتے ہیں. تو مسلمانوں تمہیں بھی تو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. ہم لیکن ابھی تک زبانوں کی بیس پہ, قبیلوں کی بیس پہ, نیشنلٹیز کی بیس پہ اپنے آپ کو بانٹے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ میرا ہے کیونکہ یہ میرے ملک کا ہے, اب چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی عقیدہ, और तुम मेरे नहीं हो, क्योंकि तुम किसी तुम काले हो, तुम चाहे मुसलमान भी हो लेकिन तुम मेरे जैसे थोड़ी हो, तुम मेरे साथ थोड़ी हो। अल्लाह ताला उम्मत एक किसको कहता है, जो एक अकीदे वाले होते हैं। किसी की बेस के ऊपर अल्लाह ताला ने दो ही बताए हैं कि या तो काफिर या तो मुसलमान। हुवल्लज़ी खलक़कुम फ़मिनकुम काफिरुन वमिनकुम मुमिन, ये कुरान में उसने तुम्हें पैदा किया, तुम में से कोई काफिर और कोई मुमिन। ये नहीं कहा कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पाकिस्तानी है, कोई इंडियन है, ये नहीं कहा। काफिर और मुमिन, यही दो हैं डिस्टिंक्शन अल्लाह के नजदीक। और हम अपने आप को कौमों में बांटते जा रहे हैं। वलौला कलिमतुन सबकत मिन रब्बिक लकुदिया बैनहुम फीमा फीही यख्तलिफून, अगर ना एक बात होती जो गुजर गई तेरे रब की तरफ से, यानी क्या अल्लाह ताला ने अगर ये ना फैसला किया होता कि ये इम्तिहान की जगह, ये दारुल जजा नहीं है, ये दारुल अमल है, तो अल्लाह ताला कब का फैसला कर चुका होता। लोग समझते हैं ना कि अगर हम झूठे हैं, अगर हम गलत हैं, अगर हमारा अकीदा गलत है, तो फिर क्यों नहीं कोई फैसला आ जाता, फिर क्यों नहीं बता दिया जाता। इसलिए नहीं बता दिया जाता कि अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया है कि यहाँ पे बातों का, ये इन अकीदों का फैसला नहीं होगा, अल्लाह के हाँ होगा, उसके लिए उसने एक दिन मुकर्रर किया। और आज उसने फैसला इसलिए नहीं करना कि अभी टेस्ट हो रहा है, लेकिन जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं, एक इन्विजिलेटर होता है ना, अब वो घूम रहा होता है वहां पे, देख रहा होता है आप कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे, ये तो नहीं कर रहे। उस वक्त आप जब टेस्ट में गलत आंसर लिख रहे होते हैं तो वो खामोश रहता है आपके। कभी कभी हमारे ऐसा भी होता था, पेपर कर रहे होते थे तो वो खड़े होकर पढ़ना शुरू कर देते थे, सर पे खड़े हो जाते थे, पढ़ रहे हैं। अब कभी भी नहीं बताएंगे वो कि आपने ये गलत किया। अब आप अगर ये कहें देखा इसका ही कसूर है, अगर मैंने गलत किया था तो फिर इसने बताया क्यों नहीं, इसलिए नहीं बताया कि इस वक्त आपका टेस्ट हो रहा है। अंडरस्टैंडेबल बात है ना। इसी तरह हम दुनिया में टेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला खामोश है। खामोश किस लिए है, क्योंकि इस वक्त हमारा टेस्ट हो रहा है। इस वक्त नहीं वो बताएगा कि तुम ये तुम फलाने तुम लोग गलत हो और फलाने तुम लोग गलत हो। तो ये अल्लाह ताला ने फैसले का दिन जब रखा ना, जब रिजल्ट आउट होगा तब वो बताएगा, तब सबकी हकीकत सामने आ जाएगी। तो आज कोई ये ना समझे कि हमारे पर कोई मुसीबत नहीं आ रही, यहाँ पे कोई बता नहीं रहा, सभी ठीक है, वरना क्यों चल रहे होते, वरना अल्लाह खत्म ना कर देता सबको। अगर अल्लाह इसी तरह खत्म करने लगे जो गलत है, तो फिर तो इम्तिहान ही खत्म हो जाएगा, फिर तो इम्तिहान का क्या। और वो कहते हैं लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुन मिन रब्बिही, वो कहते हैं इसके पर कोई निशानी क्यों नहीं आती फिर इसके रब की तरफ से। ये नबी है तो निशानी का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में लिख ले मोजा, मोजा कोई दिखाओ ना। तो इनको मोजे इतने बड़े बड़े नजर नहीं आते, आसमान और जमीन और सूरज और चांद और ये आयात नहीं है, आयात है ना, ये नहीं नजर आते। कहते हैं क्यों नहीं ये कोई मोजा दिखाता। फकुल, तो आप कह दें इन्नमल गैब लिल्लाहि फंतज़िरू, जो मोजा है वो तो गैब, गैब अल्लाह के हाथ, अल्लाह के लिए गैब, मुद्दा गैब होता है ना, वो अल्लाह के लिए यानी अल्लाह के हाथ में। फंतज़िरू, बस तुम इंतजार करो, अगर अल्लाह की मर्जी होगी तो मुद्दा दिखा देगा, अगर अल्लाह की मर्जी नहीं दिखाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुद्दा क्या है, ये कुरान। अगर उस वक्त भी ऐसे मुद्दे दिखाए जाते जैसे कि भाई जो वो कहते थे सफा पहाड़ को सोने का बना दे, इसको उस तरह बना दे, तो अगर ऐसे मुद्दे दिखाए जाते और वो ना इस्लाम लेकर आते तो फिर सबको खत्म कर दिया जाता। और चूंकि ये आखिरी उम्मत है, अल्लाह ने इसको वाइप आउट नहीं करना था, जैसे पिछली कौम में बिल्कुल खत्म हो गए, तो अल्लाह ताला ने ऐसा मोजा नहीं दिखाया, ये इसमें उन्हीं की बेहतरी थी। और ये लिविंग मोजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमेशा रहेगा कुरान की सूरत में, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से देखा जिसको उन्होंने माना ही नहीं। इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, बेशक मैं तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से। मैंने आप देख लें कि इन सारी आयतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में नहीं था ना ये मोजे दिखाना आपके हाथ में, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ना कुरान को बदलना मेरे हाथ में, ना कोई और किताब ले आना मेरे हाथ में, ना कि ये मैं जो मर्जी करूँ अपनी मर्जियां चलाऊं, नहीं मैं भी अल्लाह के अहकामात का उसी तरह पाबंद हूँ, वही का उसी तरह पाबंद हूँ जैसे तुम, मैं भी अल्लाह की नाफरमानी करके नहीं बच सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक इंसान थे, वो ये नहीं था कि वो एग्जेम्प्टेड है हर चीज से। मैं भी तुम्हारे साथ उसी तरह इंतजार करने वाला हूँ, तुम भी इंतजार करो, اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اگر چاہے گا تو دکھا دے گا. سبحان اللہ، بہت سمپل آیات ہیں جو کوئی بھی سمجھنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے. اور یہ آیتیں اگر واقعی انسان صحیح سے سمجھے تو اس کا عقیدہ درست ہو سکتا ہے. اور ہم یہیں پہ آ کے انہیں کو ٹوسٹ کر دیتے ہیں، پھر کچھ سے کچھ مطلب لے لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے عقیدے کا بگاڑ اتنا زیادہ ہے ہمارے ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا کہ اللہ کے برابر کر دیا، اور اولیاء اللہ اور ان کو تو پتہ نہیں کیا بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے اور شرک سے ہم سب کو محفوظ رکھے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعوت سنیں سیکنڈ رکوع کی.
ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين.